Yan.
Era. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। तो कल की कथा के प्रसंग में ये बात आई कि उलूक था शकुनी का बेटा, उसको दुर्योधन ने भेजा। एक तो कृष्ण और अर्जुन के बीच में मतभेद हो जाए, एक ये पांडव लोग हमारी सेना की शक्ति को सुनकर डर जाए, इनमें खलबली मच जाए, हो सके तो इनमें खटपट हो जाए और इनका उत्साह टूट जाए। लेकिन यहां तो दुगना उत्साह आया। उन्होंने जाकर सब बात कह दी, तब दुर्योधन के मन में तो थोड़ी ठेस पहुंची और उसने जाकर के सबको बता दिया कि अर्जुन को कर्ण के साथ, भीमसेन को दुर्योधन के साथ, धृष्टकेतु को शल्य के साथ, उत्तम औजा को कृपाचार्य के साथ, नकुल को अश्वत्थामा के साथ, सेव्य को कृतवर्मा के साथ, सात्यकी को जयद्रथ के साथ और शिखंडी को भीष्म के साथ युद्ध करने के लिए नियुक्त किया है, और सहदेव को शकुनी के साथ, चैकितान को शैल के साथ, ऐसे ऐसे आदेश दे दिए गए रणभूमि में। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय जब अर्जुन ने रणभूमि में भीष्म का वध करने के लिए प्रतिज्ञा की और उस प्रतिज्ञा को उलूक ने जाकर दुर्योधन को सुना दिया, तो मेरे मूर्ख पुत्र दुर्योधन ने क्या किया? मुझे तो अब ऐसा जान पड़ता है मानो श्री कृष्ण के साथ अर्जुन ने संग्राम में हमारे काका भीष्म जी को मार डाला है। को मेरा हृदय कांप रहा है। कृष्ण और अर्जुन जहां दोनों एक हो जाएंगे, वहां पितामह भीष्म की कुछ चलने वाली नहीं दिखती है। अच्छा तो बताओ, महापराक्रमी भीष्म जी ने प्रधान सेनापति का पद प्राप्त करके फिर क्या किया? संजय ने कहा कि महाराज, महासेनाध्यक्ष का पद पा करके शांतनु नंदन भीष्म जी ने दुर्योधन की प्रसन्नता बढ़ाते हुए कहा, मैं शक्तिपाणी भगवान स्वामी कार्तिकेय को नमस्कार करके आज तुम्हारा सेनापति बनता हूं। अब इसमें तुम किसी प्रकार का संदेह मत करना। मैं सेना संबंधी कार्यों और तरह तरह की व्यूह रचनाओं में कुशल हूं। मेरी व्यूह रचना का ज्ञान देवता, गंधर्व और मनुष्य तीनों को भी नहीं हो सकता। इसलिए दुर्योधन, मेरी ओर से सब प्रकार की मानसिक चिंता छोड़ दो। मैं शास्त्रानुसार तुम्हारी सेना की यथोचित रक्षा करूंगा और निष्कपट भाव से पांडवों के साथ युद्ध करूंगा। दुर्योधन ने कहा, पितामह भय तो मुझे देवता और असुरों से युद्ध करने में भी नहीं लगता, फिर जब आप सेनापति हो और पुरुष सिंह आचार्य द्रोण हमारी रक्षा के लिए खड़े हो, फिर तो कहना ही क्या है। आप अपने और विपक्षियों के सभी रथी और अतिरथियों को अच्छी तरह से जानते हो, अतः मैं और ये सब राजा लोग आपके मुख से उनकी संख्या सुनना चाहते हैं कि कितने रथी और अतिरथी हैं। भीष्म जी ने कहा, कि देखो दुर्योधन, तुम्हारी सेना में जितने रथी और महारथी हैं उनका विवरण सुनो। तुम्हारे पक्ष में करोड़ों और अरबों रथी हैं, उनमें जो प्रधान है उनके नाम सुनो। पहले तो दुशासन आदि अपने सब भाइयों के सहित तुम ही बहुत बड़े रथी हो। तुम सभी छेदन भेदन में कुशल और गदा प्रास और ढाल तलवार के युद्ध में पारंगत हो। मैं तुम्हारा प्रधान सेनापति हूं, मेरी कोई बात तुमसे छिपी नहीं है। अपने मुंह से मैं अपने गुणों का वर्णन करूं ये उचित नहीं है। शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ कृतवर्मा भी तुम्हारी सेना में एक अतिरथी है। महान धुरंधर मद्रराज शल्य को भी मैं अतिरथी मानता हूं। ये अपने भांजे नकुल और सहदेव को छोड़कर शेष सब पांडवों से युद्ध करेंगे। नकुल और सहदेव से क्यों नहीं, कि नकुल और सहदेव भांजे हैं, माद्री का भाई है शल्य। रथयूथ पतियों के अधिपति भूरी श्रवा भी शत्रुओं की सेना का बड़ा भीषण संहार करेंगे। सिंधुराज जयद्रथ को मैं दो रथियों के बराबर समझता हूं। ये अपनी दुस्त्यज प्राणों की भी बाजी लगाकर पांडवों के साथ संग्राम करेंगे। काम्बुज नरेश सुदक्षिण एक रथी के बराबर हैं। महिष्मतीपुरी के राजा नील भी रथी कहा जा सकता, नील को भी राजा नील भी रथी कहे जा सकते हैं। इसका पहले से ही सहदेव से बैर बंधा हुआ है, इसलिए यह तुम्हारे पांडवों के साथ बराबर युद्ध करेगा। अवंती नरेश विंद और अनविंद बड़े अच्छे रथी माने जाते हैं। ये दोनों युद्ध के बड़े प्रेमी हैं, इसलिए ये शत्रु सेना में खेल सा करते हुए काल के समान विचरण करेंगे। मेरे विचार से त्रिगर्त देश के पांच भाई बड़े अच्छे रथी हैं, उनमें भी सत्यरथ प्रधान है। दुर्योधन, तुम्हारा पुत्र लक्ष्मण और दुशासन का लड़का, ये दोनों यद्यपि जवान अवस्था में हैं, सुकुमार हैं, तो भी ये अच्छे रथी माने जाते हैं। राजा दंडधार भी एक रथी है, अपनी सेना के साथ वह भी संग्राम में अच्छा हाथ दिखाएगा। मेरे विचार से बृहद्बल और कौशल्य भी अच्छे रथी है। कृपाचारी का तो कहना ही क्या है, ये तो रथयूथ पतियों के भी अध्यक्ष है। वे अपने प्यारे प्राणों की भी बाजी लगाकर तुम्हारे शत्रुओं का संहार करेंगे। ये साक्षात स्वामी कार्तिकेय के समान अजेय हैं। दुर्योधन, तुम्हारे मामा शकुनी भी एक रथी हैं। इन्होंने पांडवों से बैर ठाना है, इसलिए युद्ध तो ये अवश्य करेंगे। द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा तो बहुत बड़े महारथी हैं। एक बात है, अश्वत्थामा को अपने प्राण बहुत प्यारे हैं। यदि इनमें ये दोष नहीं होता तो इनके समान योद्धा तो दोनों सेनाओं में नहीं था। पर मौका आने पर अपने प्राण दुपक लेते, मेरे प्राण न चले जाए, इसलिए इनका भरोसा नहीं है। कभी युद्ध में भाग भी सकते हैं, अब क्या कहें, गुरुपुत्र रह गए। इधर इनके पिता द्रोणाचार्य तो बूढ़े होने पर भी जवान जैसे हैं। ये संग्राम में बहुत बड़ा काम करेंगे, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। परंतु एक बात है, इनका अर्जुन पर बड़ा स्नेह है, इसलिए अपने आचार्यत्व की ओर देख कर ये उसे कभी नहीं मारेंगे। अर्जुन को ये नहीं मारेंगे। अर्जुन सामने आएगा उस समय इनके अंदर से वात्सल्य प्रकट हो जाएगा, इनके आंखों से आंसू आने लगेंगे और ये चाहेंगे कि अर्जुन मेरे पर बाण छोड़े, मैं इसकी कला को समझूं। तो ये अपने पुत्र से भी बढ़कर अर्जुन को मानते हैं, इसलिए अर्जुन को कभी नहीं मारेंगे। अर्जुन के अच्छे से अच्छे बाण को वो अपनी शिक्षा का कारण मानेंगे, वो चाहेंगे कि अर्जुन इससे भी बढ़िया बाण चलाए। अर्जुन मेरे से भी अच्छा बाण चलाएगा। ये अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को उसके बाण खाकर के भी आशीर्वाद देंगे। संपूर्ण देवता गंधर्व और मनुष्य मिलकर भी इनके सामने आवे तो अकेले रथ पर सवार होकर दिव्य अस्त्रों से सबको तहस नहस कर सकते हैं, परंतु अर्जुन के सामने ढीले हो जाएंगे। वैसे पांचाल वीरों का ये संहार करेंगे। इधर राजपूत बृहद बल भी एक सच्चा रथी है, वह काल के समान तुम्हारे शत्रुओं की सेना में घूमेगा। मेरे विचार से मधुवंशी राजा जलसंध भी रथी है, अपनी सेना के सहित वह भी प्राणों का मुंह त्याग कर युद्ध करेगा। महाराज वाल्मीक तो अति रथी है, संग्राम में साक्षात यमराज के समान है, एक बार युद्ध में आकर फिर पीछे कदम नहीं रखते हैं। ये जो सेनापति सत्यवान है ये महारथी है, इनके कर्म बड़े अद्भुत हैं। राक्षस राज अलंबुस महारथी हैं, सारी राक्षस सेना में सर्वोत्तम रथी और मायावी भी है, पांडवों से इनकी बड़ी शत्रुता है। प्राग ज्योतिषपुर के राजा भगदत्त बड़े वीर और प्रतापी हैं, ये हाथी पर चढ़कर युद्ध करने में सबसे श्रेष्ठ हैं और रथ युद्ध में भी कुशल हैं। इसके सिवा गांधारों में श्रेष्ठ अचल और वृषक, ये दोनों भाई बड़े अच्छे हैं, दोनों मिलकर शत्रुओं का संहार करेंगे। और ये जो कर्ण, जो तुम्हारा बहुत प्यारा मित्र है, तुम्हारा सलाहकार भी है, तुम्हारा नेता भी है, जिसके भरोसे तुम इतना बड़ा युद्ध अपने छाती पर लिए चल रहे हो, ये तुम्हें सदा ही पांडवों से झगड़ा कराता रहता है, ये बड़ा स्वाभिमानी है, बकवादी है, नीच प्रकृति का है, न तो ये रथी है न अतिरथी है। कर्ण को मैं कुछ नहीं समझता हूं, ये अर्धरथी है। और एक बार अर्जुन के सामने चला जाएगा तो अर्जुन के हाथ से जीता हुआ नहीं रहेगा, मर जाएगा। लेकिन तुम इसी को ही बहुत बड़ा योद्धा मानते हो, तुम्हारी भूल है। इसी समय द्रोणाचार्य भी कहने लगे, भीष्म जी आप बड़ी ठीक बात बोलते हो, आपका वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता। हमने भी प्रत्येक युद्ध में इसी कर्ण को शेखी बधारते हुए देखा है और फिर वहां से दुम छुपाकर भगते हुए आते हुए देखा है। बड़ा प्रमादी है, इसलिए मैं इस कर्ण को अर्धरथी मानता हूं। भीष्म और द्रोण की ये बातें उन सभी अतिरथियों महारथियों वीर योद्धाओं के बीच में कर्ण ने सुनी तो कर्ण की त्योरी चढ़ गई, गुस्से में भर गया और पितामह भीष्म से कहने लगा, पितामह मेरा कोई अपराध न होने पर भी आप द्वेष के कारण ऐसी ओछी बातें कहकर मुझे वाग बाणों से बींधना चाहते हो। मैं केवल राजा दुर्योधन के कारण ही आपकी सारी बातें सह रहा हूं, नहीं तो मेरा धनुष मेरे हाथ से खिसक रहा है, मेरे तुणीर के बाण आपके सन्मुख आने के लिए तैयार हैं, परंतु दुर्योधन की तरफ जाते ही मैं रुक जाता हूं। आप यदि मुझे अर्धरथी मानेंगे नहीं तो सारे संसार में यह समझ कर कि भीष्म झूठ नहीं बोलते ये बात समाप्त हो जाएगी। आपकी आयु ज्यादा है, आपके बाल पक गए, अथवा कोई आदमी धनी हो जाए, बड़ा भारी कुटुंब हो जाए, क्या उसी से ही वो महारथी होता है? और क्या आपके प्रमाणित करने पर ही कोई अर्धरथी महारथी रथी होगा। योद्धा की पहचान तो उसके बाण के कारण से होती है, आपके प्रमाण की मुझे आवश्यकता नहीं है। क्षत्रिय तो बल के कारण श्रेष्ठ माना जाता है भीष्म महाराज। इसी प्रकार ब्राह्मण वेद मंत्र के ज्ञान से, वैश्य अधिक धन से और शूद्र अधिक आयु से श्रेष्ठ समझे जाते हैं। पितामह भीष्म, आप राग द्वेष से भरे हुए हैं, आप मोह के अंदर अहंकार में डूबे हुए हैं, इसीलिए आप हमारी सेना में रथी अतिरथी का विभाग करते हैं। दुर्योधन, आप अच्छी तरह से ठीक तरह से विचार कीजिए, भीष्म का भाव दूषित है, ये आपका अहित करने वाले हैं, ये तो भीतर से पांडवों का मुंह रखने वाले हैं। क्या तुमने प्रधान सेनापति बनाकर पांडवों के भला करने के लिए युद्ध लिया है? कहां तो रथी और अतिरथियों का विचार, और कहां ये मंद बुद्धि वाला बूढ़ा भीष्म? इनके अंदर कभी विवेक आएगा? मैं तो एक अकेला सारी पांडवी सेना का मुंह फेर सकता हूं। बैठे रहने दो भीष्म को, बैठे रहने दो गुरु द्रोणाचार्य को। इन दोनों ने क्या कौरवी सेना का ठेका ले रखा? घबराओ मत दुर्योधन, यदि ये लोग शस्त्र का त्याग करके अपने महल में आराम से रहना चाहते हो तो ये कर्ण तुम्हारे लिए, पांडवों के लिए अकेला ही भारी पड़ जाएगा। युद्ध मारकाट और सत्य परामर्श की बातें, फिर शास्त्रों की दुहाई, शास्त्रों की बातें, और फिर उनमें अति वृद्धों की बातें, फिर बालकों के समान बातें, क्या बोल रहे हैं? इनको बोलने का ही होश नहीं है। इतने योद्धाओं के बीच में एक महायोद्धा को इस प्रकार से कहना पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य को शोभा नहीं देता है। दुर्योधन, यद्यपि मैं अकेला पांडवों की सेना को नष्ट कर सकता हूं, परंतु आज आपने इनको सेनापति बनाया है, इस कारण से अपनी सेना में फूट न पड़ जाए। मैं पांडवों के पक्ष में क्या, मैं तुम्हारे पक्ष में भी, जब तक ये बुढ़ा भीष्म जीवित है मैं इसके सेनापति के नीचे रहकर युद्ध नहीं कर सकता। ये जब मर जाएंगे तभी मैं लड़ करके अपना पौरुष दिखाऊंगा। भीष्म ने कहा, मूर्ख कर्ण, मैं आपस में फूट डलवाना नहीं चाहता, इसी से अब तक तू जीवित है। मैं बुढ़ा हूं, तुम स्वयं भी मुझे बुढ़ा बुढ़ा बोलते हो, ये बात तो सही है कि मैं बुढ़ा हूं, तू अभी बच्चा है, लेकिन युद्ध के अंदर बूढ़ा और बच्चा नहीं होता है। मैं तुम्हारे युद्ध की लालसा और जीवन की आशा को काटना नहीं चाहता हूं। अरे जमदग्नि नंदन परशुराम जी भी बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र बरसाकर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके, तुम उन परशुराम जी का ही तो चेला है। परशुराम जी से तूने शिक्षा ग्रहण की है, परशुराम जी मेरे से युद्ध किए, मैंने उनको भी पीछे रख दिया, मैं भी परशुराम जी का शिष्य रहा हूं। अनुचित पक्ष लेने के कारण से परशुराम जी ने कहा, मैं तुझे मारूंगा कि मेरा, आओ कर लो युद्ध, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके, तू कल का बच्चा मेरा क्या कर लेगा? अरे कुल कलंक, यद्यपि भले आदमी अपने बल की अपने मुंह से बड़ाई नहीं किया करते, पर तेरी करतूतों से कुड़ करके मुझे ये बातें आज सबके बीच में अपनी बड़ाई की कहनी पड़ती है। देख, काशीराज के यहां स्वयंवर हुआ था, कितने बड़े बड़े योद्धा लोग आए थे, मैं बाण लेकर के खड़ा हो गया, काशीराज की कन्याओं को मैं सबके बीच में हर के लाया, एक योद्धा भी मेरे सामने खड़ा नहीं रहा। हजारों योद्धा थे, और जब मैं उनको ले जाने लगा तो उन योद्धाओं ने एक साथ मेरे पर आक्रमण किया, उन हजारों योद्धाओं के बीच में मैंने अकेले में युद्ध किया था। इस प्रकार कर्ण और भीष्म के बीच में विवाद होता देखकर दुर्योधन ने कहा, भीष्म जी, कर्ण की दृष्टि कितनी अच्छी है, ये मेरे पीछे आपका अपमान सह रहे हैं, इसलिए पितामह आप भी मेरी तौर देखिए, आपके ऊपर इतना बड़ा मैंने भार डाला है, आप कर्ण की तरफ मत देखो, कर्ण की भावना को देखो कि वो दुर्योधन का हित करना चाहता है तो मैं भी दुर्योधन का हित करूं। अब आप एकमात्र मेरे हित पर दृष्टि रखिए, मेरे विचार से आप दोनों ही से मेरा बड़ा भारी उपकार होगा। अब मैं शत्रुओं की सेना में जो रथी और अतिरथी हैं, उनके विषय में सुनना चाहता हूं। मेरी इच्छा है कि मैं शत्रुओं के बलाबल के विषय में पूरी जानकारी प्राप्त करूं, ताकि मैं सावधान रहूं, क्योंकि आज की रात बीतते ही कल से तो हमारा युद्ध छिड़ जाएगा, फिर कौन रथी अतिरथी, कौन कितनी शक्ति वाला, इसका ज्ञान कब करेंगे। भीष्म ने कहा, राजन, मैंने तुम्हारे पक्ष के रथी अतिरथी अर्धरथी अच्छे बुरे सब सुना दिए, अब यदि तुम्हें पांडव पक्ष के रथी आदि सुनने की उत्सुकता है तो वो भी सुनो। सबसे पहले महाराज युधिष्ठिर बहुत अच्छे रथी हैं, और जब भीमसेन को देखता हूं तो दुर्योधन 8 रथियों के बराबर एक अकेला भीमसेन है, 8 रथी जो तुम्हारी सेना में एक भी नहीं है। बाण और गदा के युद्ध में उसके सामने दूसरा कोई योद्धा है ही नहीं, जिसमें 10,000 हाथियों का बल, जो अपने तेज से जमीन पर पैर रख करके ठोकर मारे जमीन हिल जाए, इतना तेजस्वी कोई एक भी योद्धा तुम्हारी सेना में नहीं। माद्री के पुत्र नकुल और सहदेव बहुत अच्छे सभ्य रथी है, व्यवहार में भी बड़े श्रेष्ठ और युद्ध में भी बड़े श्रेष्ठ। ये सब पांडव बाल्यावस्था में ही तुम लोगों से खेल खेल में भी तेजी से दौड़ते थे, लक्ष्य वेधन करते थे, मर्म स्थानों को पीड़ित करते थे, और पृथ्वी पर डालकर तुमको कई बार घसीट घसीट करके उन्होंने धूल चटाई है। ये सब बातें हमने आंखों से देखी है। पांडवों के अंदर तो इतना उत्साह है, ये तुम्हारी बाल्यावस्था की बातें देख करके ही युद्ध भूमि में उत्साहित हैं। और तुमको कहता हूं, ये लोग रणभूमि में हमारी सेना का ऐसा संहार करेंगे जैसा कोई आज तक नहीं किया है, और मुझे बड़ा गर्व है दुर्योधन, जिस अर्जुन को मैंने खूब गोदी में खिलाया, छाती से लगाया, मेरे पास सुलाया, मेरे हाथों से खिलाया, और जो दौड़कर आकर मेरी गोद में बैठकर और छोटे छोटे हाथों से मेरी दाढ़ी खींचता था और मेरे से बहुत प्यार करता था, वो अर्जुन जब मेरे सामने आता है तो मैं द्रवित हो जाता हूं। मुझे गर्व है ऐसे अर्जुन का मैं दादा, और उस अर्जुन के पक्षपाती साक्षात श्री नारायण सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। सच बताता हूं दुर्योधन, दोनों पक्षों की सेना में अर्जुन जैसा कोई रथी कभी भी नहीं रहा है। अर्जुन के वीरत्व के सामने मेरी शक्ति कुछ नहीं है। इस समय ही नहीं, मैंने तो भूतकाल में भी ऐसा कोई रथी नहीं सुना है। वह यदि क्रोध करेगा तो सारी सेना को अकेला विध्वंस कर देगा। अर्जुन का सामना थोड़ा बहुत यदि कोई कर सकता है तो मैं कर सकता हूँ या फिर आचार्य द्रोण। पर द्रोण भी अर्जुन से युद्ध कर सकते हैं पर करेंगे नहीं। मैं भी कर तो सकता हूँ पर क्या उस समय वृत्ति रहेगी पता नहीं। पर इतना तुम जानो कि हम दोनों के सिवा तीसरा तुम्हारे सेना में कोई ऐसा नहीं उसके सामने टिक जाए। हम दोनों भी बुढ़े हो गए, अर्जुन तो युवा है और युद्ध में कुशल है, तो हम भी पूरी बात तो इसके सामने नहीं कह सकते कि हम कोई इसको जीत लेंगे। द्रौपदी के पांच पुत्र हैं, वो महारथी हैं। विराट के पुत्र उत्तर को मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि वो रथी है। महाबाहु अभिमन्यु अपने युग का सबसे बड़ा रथ युद्धपतियों का अध्यक्ष है। 16 वर्ष का था ही, अपनी उम्र के योद्धाओं में रथ युद्धपतियों के यूथों का अध्यक्ष है। जब ये युद्ध करता है तो जाने कैसी कैसी कलाएं इसमें आती हैं। क्यों न हो, ये अर्जुन का तो पुत्र है और श्री कृष्ण का शिष्य है। वृष्णि वंश वीरों में परम शूरवीर सात्यकी ये बुद्धि कौशल और युद्ध कुशलता में निपुण है। बड़ा ही असहनशील और निर्भय है। उत्तम ओजा को अच्छा रथी मानता हूँ। युधामन्यु उत्तम रथी है। विराट और द्रुपद दोनों बुढ़े हो गए पर अजय हैं। मैं इनको बड़ा पराक्रमी महारथी मानता हूँ। और द्रुपद का पुत्र शिखंडी भी इस सेना में एक प्रधान रथी है। द्रोणाचार्य का शिष्य धृष्टद्युम्न तो सारी सेना का अध्यक्ष है। मैं इसे महारथी अतिरथी मानता हूँ। धृष्टद्युम्न का पुत्र क्षत्र धर्मा अर्धरथी है, क्योंकि बालक होने के कारण अभी उसमें विशेष परिश्रम नहीं किया है, इसलिए अर्धरथी छोटा बालक होकर के। शिशुपाल का पुत्र चेदिराज धृष्ट केतु बड़ा ही वीर और धनुर्धर है। वह पांडवों का संबंधी और महारथी है। इसके सिवा क्षत्रदेव, जयंत, अमितौजा, सत्यजीत, अज और भोज भी पांडवों के पक्ष में महान पराक्रमी है। केकय देश के पांच सहोदर राजकुमार बड़े दृढ़ पराक्रमी है, तरह तरह से युद्ध करने वाले हैं। कौशिक, सुकुमार, नील, सूर्यदत्त, शंख और मदिराश ये बड़े अच्छे रथी और युद्ध कला में निष्णात हैं। महाराज वार्धक्षेमी को भी मैं महारथी मानता हूँ। राजा चित्रायुध भी रथियों में श्रेष्ठ, अर्जुन के भक्त हैं। चेकितान, सत्यधृति, व्याघ्रदत्त और चंद्रसेन ये पांडव सेना में बड़े अच्छे रथी हैं। सेना बिंदु या क्रोध हंता नाम का जो वीर है वह तो श्री कृष्ण और अर्जुन के समान ही बलवान है, उसे भी एक उत्तम रथी मानना चाहिए। काशीराज शस्त्र चलाने में बड़ा फुर्तीला है, वह भी एक रथी के बराबर है। द्रुपद का युवा पुत्र सत्यजीत तो 8 रथियों के बराबर है, उसे धृष्टद्युम्न के समान अतिरथी कहा जा सकता है। राजा पांड्य भी पांडव सेना का महारथी है। इसके अलावा भी बहुत से लोग हैं जिनको मैं अतिरथी मानता हूँ। कुंतीभोज महारथी, वह भीमसेन का मामा है, मेरे विचार से वो अतिरथी है। अच्छा, तुमको एक बात का ज्ञान है कि नहीं, भीमसेन का पुत्र राक्षसराज घटोत्कच बड़ा मायावी है, उसे मैं रथयुद्धपतियों का भी अधिपति मानता हूँ। इसके अलावा मैंने तुम्हें ये पांडव सेना के प्रधान प्रधान रथी, अतिरथी, अर्धरथी सुनाए, लेकिन श्री कृष्ण और अर्जुन या दूसरे राजाओं में से जो जहां भी मिलेगा मैं उन सबको रोकने का प्रयत्न करूंगा। लेकिन मेरे सामने यदि द्रुपद का पुत्र शिखंडी आ जाएगा उसको मैं नहीं मारूंगा, क्योंकि मैंने सब राजाओं के सामने आजन्म ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा की है। अतः किसी स्त्री को अथवा जो पहले भी स्त्री रहा हो उस पुरुष को भी मैं कभी नहीं मार सकता। शायद तुमने सुना हो ये शिखंडी पहले स्त्री था, ये कन्या रूप से उत्पन्न होकर पीछे पुरुष हो गया, इसलिए इससे मैं युद्ध नहीं करूंगा। इसके सिवा रणभूमि में जो राजा मेरे सामने आवेंगे उन सबको मारूंगा, किंतु कुंती पुत्रों के प्राण नहीं लूंगा, ये तुम पहले ही जान लो। दुर्योधन ने कहा, दादाजी यदि आप पांडवों के प्राण नहीं लोगे तो फिर हमारी विजय कैसे होगी। पितामह भीष्म ने कहा, मैं अपने हाथ से पाले हुए बच्चों को मारने के लिए नहीं युद्ध कर रहा, मैं हस्तिनापुर की रक्षा के लिए युद्ध कर रहा हूं। हस्तिनापुर की रक्षा मैं पांडवों के पुत्रों को मारे बिना ही करना चाहता हूं। पांडवों के पुत्र को मैं नहीं, कुंती के पुत्रों को नहीं मारूंगा। दुर्योधन ने पूछा, अच्छा दादाजी, आताई शिखंडी यदि रण क्षेत्र में बाण चढ़ाकर आपके सामने आएगा, आप उसको क्यों नहीं मारोगे। भीष्म पितामह बोलने लगे, सुनो, शिखंडी के रणभूमि में सामने देखकर मैं उसे इसलिए नहीं मारूंगा, उसका कुछ कारण है। जब मेरे जगत विख्यात पिता शांतनु जी स्वर्गवासी हुए तो मैंने अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए चित्रांगद को राज सिंहासन पर बैठा दिया। चित्रांगद था शांतनु की दूसरी पत्नी सत्यवती, उसका लड़का। चित्रांगद को मैंने राज सिंहासन पर बैठा दिया। जब उसकी मृत्यु हो गई तो माता सत्यवती की सलाह से मैंने विचित्र वीर्य को राजा बनाया। विचित्र वीर्य की आयु बहुत छोटी थी, इसलिए राजकार्य में उसे मेरी सहायता की अपेक्षा रहती थी। फिर मुझे किसी अनुरूप कुल की कन्या के साथ उसके विवाह करने की चिंता हुई। उस समय मैंने सुना कि काशीराज की अंबा, अंबिका और अंबालिका नाम की तीन अनुपम रूपवती कन्याओं का स्वयंवर होने वाला है। उसमें पृथ्वी के सभी राजाओं को बुलाया गया था। मैं भी अकेला ही रथ में चढ़कर काशीराज की राजधानी में पहुंचा। वहां ये नियम किया गया था कि जो सबसे बड़ा पराक्रमी होगा उसे ये कन्याएं ब्याही जाएंगी। मुझे जब ये मालूम हुआ तो मैंने तीनों कन्याओं को अपने रथ में बैठाया और कहा, आओ कौन मेरे से युद्ध करता है। उनको अपनी ताकत से मैंने रथ में बैठा दिया और वहां इकट्ठे हुए राजा लोगों को मैंने बार बार कहा, ये शांतनु पुत्र भीष्म तीनों कन्याओं को ले जाया जा रहा है। आप लोगों का यदि बल पराक्रम दिखाने में रुचि है तो आओ इनको छुड़ाओ और प्रयत्न करो। सबके सब राजा शस्त्रास्त्र लेकर मेरे पर टूट पड़े। मैंने अपने सारथियों को रथ तैयार करने का आदेश दिया। उन्होंने रथ पर चढ़कर मुझे चारों ओर से घेर लिया। मैंने भी बाण बरसाकर उसे सब ओर से ढक दिया। मैंने एक एक बाण मारकर उनके हाथी घोड़े सारथियों को धराशायी कर दिया। मेरी बाण चलाने की ऐसी फुर्ती देखकर उनके पीछे मुंह को पीछे फिर गए और मैदान छोड़कर भाग गए। इस प्रकार जब राजा लोग भागने लगे तो मैंने बाण नहीं छोड़ा और मैं हस्तिनापुर आ गया। भाई विचित्र वीर्य के लिए तीनों कन्याएं माता सत्यवती को सौंप दी। मेरी बात सुनकर के सत्यवती को बड़ा आनंद हुआ। उसने कहा, बेटा मुझे बड़ा संतोष हुआ, तुमने सब राजाओं पर विजय प्राप्त करके पुत्र विचित्र वीर्य के लिए बड़ी सुंदर कन्याएं लाए हो। जब सत्यवती की आज्ञा से विवाह की तैयारियां होने लगी उस समय में काशीराज की सबसे बड़ी पुत्री अंबा ने बड़े संकोच से कहा, हे पितामह, आप संपूर्ण शास्त्रों में पारंगत और धर्म के रहस्य को जानने वाले हो, अतः मेरी धर्मानुकूल बात सुनकर फिर आप जैसा उचित समझे वैसा करें। मैं मन ही मन राजा साल्व को अपना पति मान चुकी हूँ और उन्होंने भी पिताजी को प्रकट न करते हुए एकांत में मुझे पत्नी रूप से स्वीकार कर लिया है। इस प्रकार मेरा मन तो दूसरी जगह फंस चुका है। फिर कुरुवंशी होकर मैं राजधर्म को तिलांजलि कैसे दूं? ऐसी राजकुमारी को आप अपने घर में क्यों रखना चाहते हो? ये बात मालूम करके आप अपने विचार में कर लो कि अब आपको क्या करना है। मुझे साल्व के पास भेजना उचित मानते हो तो भेज दो, और यदि यहीं रहने की आज्ञा देते हो तो वैसा मुझे बता दो। मेरे सामने बड़ा धर्म संकट हुआ। तब मैंने मां सत्यवती, मंत्रीगण, ब्राह्मण लोग, पुरोहित लोग सबको बुला करके सबसे सलाह की। सबने कहा अम्बा को जाने की आज्ञा दे दीजिए। अम्बा वृद्ध ब्राह्मण और धात्रियों को साथ में लेकर राजा सालु के नगर में गई और उस अम्बा ने सालु के पास जाकर कहा, हे महाबाहो, आपका और हमारा पहले से ही प्रेम हो चुका था। उस प्रेम के कारण पितामह भीष्म ने मुझे आपके पास आने के लिए छुट्टी दे दी है, आज्ञा दे दी है। अब मैं उस प्रेम को निभाने के लिए आपकी सेवा में उपस्थित हूं। यह सुनकर के सालु ने कुछ मुस्कुराकर कहा, हे सुंदरी, पहले तुम्हारा संबंध दूसरे पुरुष से हो चुका है, इसलिए अब मैं तुम्हें पत्नी रूप से स्वीकार नहीं कर सकता। जब तुम भीष्म के पास चली गई, भीष्म अपने रथ में बैठाकर तुमको ले गए, तो तुम्हारे पर भीष्म का अधिकार हो गया। अब मैं दूसरे के अधिकार में गई हुई वस्तु को कैसे ले सकता हूँ? मैं तो और लोगों को भी ये उपदेश देता हूँ और मुझे सब बातों का पता भी है, किंतु पहले आप अब दूसरों के साथ संबंध हो जाने पर मैं तुम्हें कैसे रख सकता हूँ? ये धर्म विरुद्ध है, अतः तुम्हारी जहाँ इच्छा हुआ चली जाओ। अम्बा ने कहा, हे शत्रु दमन, हे मेरे प्राण प्रियतम, भीष्म जी मेरी प्रसन्नता से मुझे थोड़ी लेकर गए थे, उन्होंने तो हमको विवश कर दिया। उनकी शक्ति के सामने हम कुछ बोल नहीं सके थे। मैं तो उस समय भी आपके वियोग में खूब रो रही थी। ये सब राजाओं को हरा करके ले आए, मैं क्या करती? हे सालवराज, इस विषय में मैं निरपराध हूँ, आपकी दासी हूँ, आप ही को चाहती हूँ, आप मुझे स्वीकार कीजिए। अपनी सेविका को त्यागना धर्मशास्त्र में अच्छा नहीं कहा गया है। संसार में मेरी भी बड़ी निंदा होगी। इधर तो आप त्याग देंगे, उधर भीष्म जी ने त्याग दिया, इसलिए मैं भीष्म जी से स्पष्ट आज्ञा लेकर आई हूँ, आपको मुझे स्वीकार करना चाहिए। भीष्म को भी अब मेरी कोई अभिलाषा नहीं है, उन्होंने तो अपने भाई के लिए ही तो काम किया था। मेरी छोटी बहन अंबिका और अंबालिका का विवाह अपने छोटे भाई विचित्र वीर से करवा दिया है। मैं तो आपके सिवा किसी को भी नहीं वर सकती। अपने मन में चिंतन भी मैं नहीं ला सकती, केवल आप ही का चिंतन करती हूँ। न मैं पहले किसी की पत्नी होकर आपके पास आई हूँ और न मैं किसी के पास जाने वाली हूँ। मैं अभी कन्या ही हूँ, मेरा कन्यात्व दूषित नहीं हुआ है। इस समय स्वयं ही आपके पास उपस्थित हूँ और आपकी कृपा चाहती हूँ। इस तरह बड़ी विनम्रता से, शालीनता से अम्बा ने प्रार्थना की, किंतु शालु ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। तब उसके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी और उसने गदगद कंठ से कहा, राजन, मुझ पवित्र भावना वाली अपनी सेविका को आप त्याग रहे हैं, अच्छी बात है, किंतु ये अटल है कि मैं जहां भी जाऊंगी वहीं पर संतजन मेरी रक्षा करेंगे। इस प्रकार वे करुणापूर्वक बहुत विलाप करने लगी और फिर भी शालु ने उसे त्याग दिया। जब वह नगर से बाहर गई तब उसके मन में विचार आया, इस पृथ्वी पर मेरे समान दुख पाने वाली कोई और युवती नहीं होगी। इधर तो पिता से संबंध टूट गया, इधर भीष्म ने मुझे साल्व के पास जाने की आज्ञा दे दी, इधर साल्व ने मेरा तिरस्कार कर दिया, मैं तो किधर की नहीं रही, न मायके जा सकती हूँ, माँ बाप के पास जा सकती हूँ, न जिसने मेरा हरण किया उसके पास जा सकती हूँ, और न ही जिसका मैंने वरण किया उसके पास ही जा सकती हूँ। शायद इसमें मेरा कोई न कोई दोष ही होगा। तब ऐसी परिस्थिति आई है। ओह, यदि कितना अच्छा होता, यह भीष्म जी युद्ध कर रहे थे उस समय मैं रथ से उतरकर उछलकर राजा साल्व के रथ में उतर जाती और उनके पास बैठ जाती, कितना अच्छा होता। लेकिन उस समय भय के कारण से मेरे मन में कोई बात पैदा ही नहीं हुई, कांप रही थी। आज उसी का ये फल मिल रहा है। किंतु ये सारी आपत्ति भीष्म के कारण आई है, अतएव तपस्या या युद्ध के द्वारा मुझे भीष्म का बदला लेना चाहिए। भीष्म जी ने कहा, वो भीष्म जी बता रहे सब। ऐसा निश्चय करके वह नगर से बाहर निकलकर तपस्वियों के आश्रम में चली गई। वह रात उसने वहीं व्यतीत की और ऋषियों को अपना सारा दुख सुना दिया। ऋषि लोग आपस में बात करने लगे, अब इस कन्या के लिए क्या करें, बेचारी इस कन्या का क्या दोष है, पिता के यहां थी, सालू से प्रेम किया, इसमें तो कोई दोष नहीं था, सालू भी क्षत्रिय है, पिता भी क्षत्रिय है, अब क्या करें। तो उन ऋषियों ने कहा कि चलो इसके पिता के यहां पहुंचा देते हैं। किसी ने कहा चलो भीष्म को ही समझाएं, तो कोई मेरे पास आए और कई पिता के पास गए, इसके पिता के पास, काशीराज के पास। किसी ने कहा कि चलो सालू को जाकर मनाए और कह दे भाई विवाह कर लो, क्षत्रिय तो बहुत सी स्त्रियों को रखते हैं, तुम भी इसको रख लो। किंतु किन्हीं लोगों ने कहा कि देखो ये अपन जहां भी जाएंगे वहां पर लोग हमारी बात को काट देंगे, स्वीकार नहीं करेंगे। सब ने अंत में निर्णय दिया कि अंबे एक काम करो, पिता के आश्रय में रहो, जब स्त्री ससुराल पक्ष से निराश हो जाती है तब उसका पिता का घर होता है, वो कभी बंद नहीं होता, इससे बढ़कर और कोई बात नहीं है कि तुम पिता के वहां रहो और अपना जीवन भगवत भजन में लगाओ। स्त्री के दो ही आश्रय होते हैं, पहला पति और दूसरा पिता। अम्मा ने कहा हे मुनिगण, ये तो उन सामान्य स्त्रियों की बात है, मैं काशीपुरी में अपने पिता के घर लौटकर इसलिए नहीं जा सकती क्योंकि वहां से भीष्म ने मुझे अपने बाहुबल से निकाल दिया था। अब बाहुबल काशीपुरी, यदि काशीपुरी के राजा मेरे पिता बाहुबल दिखाते तब तो मैं पिता के पास जा सकती, वो भी बाहुबल नहीं दिखा सके, तो उनकी दृष्टि में तो मैं उनकी रही नहीं। आजा मान लो पिता मोह के कारण से मुझे रख भी लेंगे तो मेरे भाई, मेरी भौजाइयां और इतना बड़ा परिवार ये तिरस्कार करेंगे और कहेंगे लो पहले तुम भीष्म के साथ क्यों गई, गई तो तुम यहां क्यों आई, किन किन की बातें सुनूंगी। इसलिए मैं तो तपस्या करना चाहती हूं जिससे अगला जन्म मैं ऐसे दुर्भाग्य को प्राप्त न हो सकूं, ऐसा अगला जन्म चाहती हूं। वे ब्राह्मण लोग इस प्रकार उस कन्या के विषय में विचार कर रहे थे कि इतने में ही परम तेजस्वी राजर्षि होत्रवाहन वाए, तपस्वियों ने बड़ा स्वागत किया, उनको वहां पर बैठाया और कहा कि आज इतने ऋषि मुनि क्या चर्चा कर रहे हैं? और ऋषि मुनियों के पास ये रोने वाली कन्या कौन है? तब राजर्षि होत्रवान को बड़ा खेद हुआ कि अच्छा, काशीराज की कन्या भीष्म के द्वारा हार ली गई और भीष्म ने उसको शाल्वे के पास भेज दिया और शाल्वे ने भी उसको नहीं रखा। ये बिचारी दुखी तपस्वियों की शरण में आई है। ये होत्रवान अंबा के नाना लगते थे। उन्होंने उसे गोद में बैठाकर ढाढ़स दिलाया, सारा वृत्तांत पूछा और अंबा ने जैसा जैसा हुआ रो करके सब अपना दुखड़ा सुनाया। और फिर होत्रवान ने कहा कि बेटी, मैं तेरा नाना हूं, अब तू अपने पिता के घर मत जा, मेरे कहने से तू परशुराम जी के पास चली जा, वे तेरे इस महान शोक संताप को दूर कर देंगे। वे महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं, उन्हें जाकर प्रणाम करना और मेरी ओर से सब बातें कह देना, मेरा नाम लेना कि मैं उनकी दोहिती हूं, उन्होंने मुझे आपके चरणों में भेजा है। बेटी, ये परशुराम जी भीष्म के गुरु हैं और भीष्म इनकी आज्ञा का पालन करने में विवश है। देखो बेटा, वे मेरे बड़े प्रेमी हैं और स्नेही सखा हैं, इसलिए मैं उनके पास तुमको भेज रहा हूं। अभी कोई योग की बात थी। उसी समय में जब ये राजर्षि होत्रवान और उनकी दोहिती बातें कर रहे थे अंबा से, उसी समय परशुराम जी अपने परशुराम जी का प्रिय सेवक अकृतवर्ण वहां आ गया। उसका नाम था अकृतवर्ण, नाम परशुराम जी का सेवक था वो। सब मुनियों ने सत्कार किया। अकृतवर्ण जी ने मुनियों का यथायोग्य अभिनंदन किया, वो भी वहां पर बैठ गए। होत्रवान ने परशुराम जी का कुशल क्षेम पूछा। अकृतवर्ण ने कहा कि परशुराम जी आपसे मिलने के लिए कल प्रातःकाल यहां आ ही रहे, इसलिए आप कुशल क्षेम उन्हीं से ही पूछना। अब ये होत्रवान और उनकी दोहिती अंबा बड़े खुश हुए और भी ऋषि मुनि बड़े खुश हुए। वो दिन तो जैसे तैसे बातों में निकल गया। दूसरे दिन सवेरे ही शिष्यों से गिरे हुए परशुराम जी आ गए, बड़ा ब्रह्म तेज, सिर की जटा और शरीर में चीर वस्त्र सुशोभित, हाथ में धनुष खड्ग परशु, सब तेजस्वियों में महान। राजा होत्रवान और अंबा हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हुए, परशुराम जी की पूजा की। परशुराम जी उनके बीच में बैठ गए। राजा होत्रवान और परशुराम जी में अनेक प्रकार की बातें चर्चा हुई। बात ही बात में राजा होत्रवान ने कहा, परशुराम जी, ये काशीराज की कन्या है और मेरी दोहित्री है, इसका एक विशेष कार्य है, आप सुन लीजिए। तब परशुराम जी ने उससे कहा कि बिटिया, तेरा क्या काम है, हमसे होता हो तो बताओ। तब अंबा ने जैसा जैसा हुआ सब सुना दिया। तब परशुराम जी ने कहा, अरे भीष्म को कहना है, मैं तुझे फिर भीष्म के पास भेज दूंगा, चिंता मत कर, मैं जैसा कहूंगा वैसा भीष्म को करना ही पड़ेगा, कहां जाएगा। और यदि भीष्म ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं उसके मंत्रियों सहित भीष्म को भस्म कर दूंगा। अम्मा ने कहा, आप जैसा उचित समझे वैसा करें, मैं तो बहुत संकट में हूं। आपको ये भी पता है कि नहीं, मेरे इस मूल संकट के कारण ब्रह्मचारी भीष्म जी हैं। उन्होंने मुझे बलपूर्वक अपने अधीन कर लिया है, अतः आप उन्हें कैसे नष्ट करेंगे वो आप जाने। अंबा के कहने पर परशुराम जी ने उसे तथा उन ब्रह्मज्ञानी राजर्षियों को साथ लेकर कुरुक्षेत्र में आए। वहां वे सरस्वती नदी के तीर पर ठहर गए। अभी कुरुक्षेत्र की बात नहीं, पुरानी बात कह रहे हैं भीष्म जी। तीसरे दिन उन्होंने मेरे पास संदेश भेजा, भीष्म तुम्हारा गुरु परशुराम एक विशेष कार्य से तुम्हारे पास आ रहा है, तुम मेरा ये प्रिय कार्य अवश्य करो। अपने संदेश में परशुराम जी के पधारने का समाचार सुनकर मैं तुरंत बड़े प्रेम से उनसे मिलने के लिए गया। भीष्म जी सुना रहे हैं सब बात, मैं बड़े प्रेम से मिलने के लिए गया। मैंने जाकर बड़ी नम्रता से परशुराम जी के सामने सत्कार के लिए गऊ आगे रख दी। परशुराम जी ने मेरी पूजा स्वीकार की और मुझसे कहा, हे भीष्म, हमने सुना है तुमने आजन्म ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा की है। जब तुम स्वयं विवाह करने की इच्छा नहीं रखते थे तो फिर काशीराज की पुत्री को क्यों हर लाए, क्यों वहां गए, क्यों बच्चियों को लाए और फिर इसको त्याग भी दिया? देखो, तुम्हारा स्पर्श होने से अब ये स्त्री धर्म से तो भ्रष्ट हो गई, इससे राजा सल्व ने भी स्वीकार नहीं किया, अतः अब अग्नि की साक्षी में मेरे कहने से तुम इसे स्वीकार करो। मैंने बड़ी नम्रता से कहा, गुरुवर, मैंने अपने भाई के लिए इसका विवाह करने के लिए मैं लाया था, मेरे विवाह का कोई प्रश्न ही नहीं है, मैंने स्त्री समझ करके स्पर्श नहीं किया है। एक योद्धा होकर और दूसरे समस्त योद्धाओं को चेतावनी के कारण से मैंने इसको रथ में बैठाया है, स्त्री समझ के स्पर्श करता तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैंने इसे देश निकाला नहीं दिया था, इसी ने मुझे कहा कि मैं तो सालू की हो चुकी हूं। आप भी बताइए गुरुदेव, जो स्त्री अपना मन किसी और को दे चुकी होती हो फिर उसके मन के विरुद्ध उसको अपने घर में रखना कहां तक न्याय की बात थी? इसलिए मैंने इसी का मन रखने के लिए मैंने सालू नगर में भेज दिया, ये सालू नगर गई। अब आप मुझे किसी प्रकार का भय दिखाए तो भय, निंदा, अर्थ लोभ या किसी कामना से छात्र धर्म से मैं विचलित तो नहीं हो सकता। मेरी बातें सुनकर परशुराम जी की आंखें क्रोध से चंचल हो गई, कहने लगे, तू मेरा शिष्य मेरी आज्ञा का पालन नहीं करे, मैं तुम्हारे मंत्रियों से तुम्हारे राज्य को भ्रष्ट नष्ट कर दूंगा। मैंने उनके सामने बड़ी नम्रता से कहा, गुरुदेव, आप इन सब बातों से ऊपर उठे हुए हैं, आप भगवत स्वरूप हैं, आप इन व्यवहार की बातों को छोड़िए और आपने जो आज तक मुझे उपदेश दिया है उन्हीं उपदेशों के बारे में सोचिए और फिर आप मुझे परीक्षा के लिए बोलते हैं तो आप ही के दिए हुए ज्ञान की परीक्षा में कहता हूं कि मैं इसे किसी हालत में स्वीकार नहीं करूंगा। मैंने अपना सिर उनके चरणों में रखा और कहा, भगवान, आप मुझसे कुछ भी चाहे कर सकते हैं लेकिन मैं अंबा को यहां नहीं रख सकता। बाल्यावस्था में आप ही ने मुझे चार प्रकार की धनुष विद्या सिखाई थी, मैं तो आपका शिष्य हूं, कर लीजिए अपने शिष्य की परीक्षा, चलाइए शस्त्र और देखिए कि आपके चारों प्रकार की धनुर्विद्या मेरे पास सुरक्षित है कि नहीं। परशुराम जी ने कहा, भीष्म, तुम मुझे गुरु भी मानते हो, मेरे चरणों में सिर भी रखते हो और मेरी प्रसन्नता के लिए काशीराज की कन्या को स्वीकार भी नहीं करते, ये काहे की तुम्हारी गुरु भक्ति? देखो, ऐसा किए बिना तुम्हें शांति नहीं मिल सकती। मैंने कहा, महाराज, आप व्यर्थ में क्यों परिश्रम करते हो? भीष्म जीवन में एक बार जो बात कह चुका उससे पीछे हिलने वाला नहीं है, ये आप ही से तो मुझे शिक्षा मिली है, मैंने इसका त्याग कर दिया। जिसका दूसरे पुरुष पर प्रेम हो उस स्त्री को कोई किस प्रकार अपने घर में रह सकता है, फिर मेरे जैसा बिल्कुल नहीं रख सकता। मैं इंद्र के भय से भी धर्म का त्याग नहीं करूंगा। आप प्रसन्न हो तो मेरा गौरव है, यदि आप प्रसन्न नहीं हो तो मेरा कोई बस नहीं चलता है, परंतु आपको जो करना वो करो। आप मेरे गुरु हैं, इसलिए मैंने प्रेम पूर्वक आपका सत्कार किया है, लेकिन आप गुरुओं का सा बर्ताव करना जानते ही नहीं। आप तो हर समय युद्ध की धमकी देते हो, तो मैं युद्ध भी आपके सामने करने के लिए तैयार हूं। महाराज आप गुरु हैं इसलिए इतनी बातें सहन कर रहा हूं, किंतु धर्मशास्त्रों ने ऐसा निश्चय किया है कि जो क्षत्रिय क्षत्रिय के समान ही हथियार उठाकर सामने आए हो, उस ब्राह्मण को जबकि वो युद्ध के लिए ललकार रहा हो, क्षत्रिय को मैदान छोड़कर भागना नहीं होता। और यदि वो ब्राह्मण के साथ युद्ध करता है और ब्राह्मण यदि मरता है तो ब्रह्म हत्या भी नहीं लगती। मैं भी क्षत्रिय हूं, क्षत्र धर्म में स्थित हूं, इसलिए आप प्रसन्नता से मेरे साथ द्वंद्व युद्ध करने के लिए तैयार हो जाए। आप जो बहुत दिनों से डींग हागा करते हैं, मैंने अकेले पृथ्वी सारे क्षत्रियों को जीत ली। सुनिए, उस समय न तो भीष्म पैदा हुआ, न भीष्म के समान कोई क्षत्रिय भी पैदा हुआ था। तेजस्वी वीर तो पीछे उत्पन्न हुए हैं महाराज, आप तो घास फूस में ही प्रज्वलित होते रहे, जो आपके युद्धाभिमान और युद्ध लिप्सा को अच्छी तरह नष्ट कर सकता है। उस समय का भीष्म पैदा नहीं हुआ, आज भीष्म पैदा हुआ। आओ करो दो दो हाथ। तब परशुराम जी ने हंस करके मुझसे कहा, अरे भीष्म, तुम संग्राम भूमि में मुझे भी ललकारते हो, मुझे बड़ा गौरव हुआ। शिष्य हो तो ऐसा हो, मुझे बड़ी प्रसन्नता है। तुम बाण चलाओ, मैं भी तुमसे युद्ध करूंगा। अच्छा लो तो कुरुक्षेत्र में चले, वहां अपने दोनों घमासान युद्ध करेंगे, तुम भी वहीं आ जाओ। मैं तुम्हें सैकड़ों बाणों से बीत कर धराशायी कर दूंगा, और उसके बाद मैं रो रो करके अपना जीवन समाप्त करूंगा कि मेरे हाथ से भीष्म जैसा शस्त्र और शास्त्र को जानने वाला मेरा शिष्य मारा गया। चलो वहां चलते हैं। उस दीन दशा में तुम्हें तुम्हारी माता गंगा देवी भी देख दिखाई देगी, और गंगा आकर तुझे अपने हाथों से बाण निकाल निकाल करके सांत्वना देगी। चलो कुरुक्षेत्र चलो। मैंने कहा जो आ गया चलो तो चलो। अब हम और परशुराम जी कुरुक्षेत्र चले आए, और मैंने हस्तिनापुर में आकर सब बातें सत्यवती माता को सुनाया। माता ने मुझे आशीर्वाद दिया, मैं ब्राह्मणों से पुण्याह वाचन और स्वस्ति वाचन कराकर हस्तिनापुर से निकलकर कुरुक्षेत्र की ओर चला गया। उस समय ब्राह्मण लोग मुझे आशीर्वाद दे रहे थे, भीष्म की जय हो, भीष्म की जय हो। कुरुक्षेत्र में पहुंचकर हम दोनों युद्ध के लिए पराक्रम करने लगे। मैंने परशुराम जी के सामने खड़ा होकर अपना श्रेष्ठ शंख बजाया। उस समय ब्राह्मण वनवासी तपस्वी इंद्र सहित सब देवता सब चारों तरफ हम दोनों का दिव्य युद्ध देखने के लिए आ गए। बीच बीच में देवता लोग पुष्पों की वर्षा भी करते थे, बीच बीच में धुंधलियां भी बजती थी, बीच बीच में मेघों का शब्द भी होता था। परशुराम जी के साथ जो तपस्वी आए थे वे भी युद्ध भूमि को घेरकर दर्शक बन गए। उसी समय में समस्त भूतों का हित चाहने वाली माता गंगा मूर्तिमती होकर मेरे पास आई और कहने लगी, बेटा तुमने क्या विचार किया? मैं अभी परशुराम जी के पास जाकर प्रार्थना करती हूं कि जैसे भीष्म मेरा बेटा है, ऐसे आपका शिष्य होने से आपका भी तो बेटा है, आप उसके साथ युद्ध न करें। मेरी बात परशुराम जी मान जाएंगे, परशुराम जी मान जाए तब तुम भी युद्ध के लिए हट मत करना। तुम्हें क्या मालूम, तुम्हें ये मालूम नहीं है, ये 21 बार क्षत्रियों का नाश कर चुके हैं, ये साक्षात महादेव के समान शक्तिशाली है, इनसे लोहा लेना अरे राम तुम्हारे बस की बात नहीं है बेटा। तब मैंने दोनों हाथ जोड़कर माता को प्रणाम किया और परशुराम जी से मैंने जो कुछ कहा था वो सब सुना दिया और साथ ही अम्बा की जो करतूत थी वो भी सुना दी। तब गंगा परशुराम जी के सामने गई और उनसे क्षमा मांगते हुए कहने लगी, हे मुने आप अपने शिष्य भीष्म के साथ युद्ध न करें। इसमें यदि आपने भीष्म को मार दिया तो आप पर कलंक लगेगा और यदि आप भीष्म से हार गए तो आप पर कलंक लगेगा, आप कहीं के नहीं रहोगे, इसलिए आप युद्ध बंद कीजिए। इधर परशुराम जी ने कहा, तुम मुझे तो बोलते हो भीष्म को रोको, भीष्म रुकेगा तब मैं रुकूंगा, वह मेरी एक बात नहीं मानता, इसी से मैं युद्ध करने के लिए आया हूं, और वो रुक जाएगा तो मैं भी रुक जाऊंगा। तब गंगा जी भीष्म के पास मेरे पास आई और मुझे कहने लगी, तुम युद्ध बंद कर दो। किंतु मैंने कहा, मां मैं पहले शस्त्र को डाल दूं का अर्थ होता है अब समस्त क्षत्रियों ने परशुराम जी की अधीनता स्वीकार कर ली है, शस्त्र डालने के बाद उनकी आज्ञा को स्वीकार करना मेरा कर्तव्य बन जाएगा और मैं अम्बा को किसी प्रकार से स्वीकार नहीं कर सकता। मैंने मना कर दिया। इतने में ही महातपस्वी परशुराम जी रणभूमि में आए और उन्होंने कहा कि आए भीष्म आओ आओ अब मेरे साथ युद्ध करो। तो मुझे ललकारा, अब मैं भी अपने शस्त्र वगैरह तैयार करके युद्ध के लिए खूब अच्छी तरह से तैयार हुआ। ये सब प्रसंग कल आगे चलेगा।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण।